हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद के तिरवा तिथि मनाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर हमारे शिला ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के दीक्षा गुरु शिक्ष गुरु थे। उनका जन्म श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में हुआ 1874 6 फरवरी। और उनके पिताजी थे शिला सच्चनानंद भक्ति विनोद ठाकुर। और बचपन से और शिला भक्ति विनोद ठाकुर ये भी तो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त है, राधा कृष्ण जुगल के दासी है कृष्ण लीला में। और ये बड़े विद्वान थे भक्ति विनोद ठाकुर, और इसलिए उनका नाम भी है सप्तम गोस्वामी। उन्होंने ये 6 गोस्वामियां जो महाप्रभु के परिकार है उनके जो शास्त्र जो बुद्धिजीव के हित के लिए है, वैष्णव के हित के लिए, उन्होंने भी सरल भाषा में भी अपनी किताबें प्रकट किए थे। और तो उन्होंने भी देखा कि कलयुग के प्रभाव से ज्यादा वैष्णव तो नहीं थे उनके समय भी, अलग अलग संप्रदाय थे लेकिन अपसंप्रदाय कहते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार उनके धारा में नहीं थे, थोड़ा सा अलग हो गए थे, इसलिए अपसिद्धांत कहलाता है। भगवान को मानते थे लेकिन अच्छा तरह से साधन भजन नहीं करते थे, जिससे महाप्रभु के आदेश अनुसार या 6 गोस्वामियों के अनुसार। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना किए थे कि हम तो अकेले हैं और हम क्या प्रचार कर सकता है। और उन्होंने प्रचार तो किए थे और बहुत सारे किताबें उन्होंने लिखे, लेकिन फिर भी भगवान से सहायता देने के लिए प्रार्थना करते थे, हे प्रभु एक आपके एक परिकार कृपा करके हमारे पास भेज दीजिए, जिससे हम और अच्छे तरह से प्रचार कर सकता है। और इसके फलस्वरूप उनके तो ये गृहस्थ थे, उनके 10 बच्चे थे और इनमें से विशेष करके 2 वैष्णव थे, एक तो हमारे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनका नाम उन्होंने दिया था विमल प्रसाद। तो जगन्नाथ मंदिर में वहाँ पर एक विमला देवी है, तो अंतरंग शक्ति के रूप है, तो जिनकी कृपा से हम आगे जा सकते हैं योग माया। तो क्योंकि वास्तव में जो भगवान की सेवा करने के लिए हमको गुरु की कृपा चाहिए, या जो भगवान विषय विग्रह है वो गुरु या उनके कृष्ण भगवान कृष्ण के या महाप्रभु के परिकार या अशय विग्रह है जिनके पास कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो मूल शक्ति श्रीमती रानी है अशय विग्रह के स्वरूपिणी श्रीमती रानी। तो लेकिन उनकी गुरु जान और दूसरे विस्तार जो है जैसे विमला देवी, ये भी अशय विग्रह के स्वरूपिणी है। तो उनसे प्रार्थना किए भी थे और इसके बाद तो नाम दिया विमला प्रसाद। ये बिल्मे देवी का प्रसाद है और क्योंकि आशा वगैरह की कृपा के बिना हम आगे नहीं जा सकते हैं, तो पहले गुरु की कृपा चाहिए, इसके बाद गौरांग, इसके बाद विशेष करके श्रीमती रानी की सहेलियां की कृपा चाहिए। तो ये उनके पुत्र तो बिमल प्रसाद, तो उनका जन्म हुआ और उसी समय भी जब उनका जन्म हुआ तो ये जो नाभि के जो क्या कहता है नाभि के जो राशि जो निकालता है क्या है हिंदी में, कमलनाल, हाँ, ये जैसे ब्राह्मण के पास तो उपनयन है जनेऊ है, वैसे ही कमलनाल तो ये जनेऊ के समान उनके दिव्य शरीर पे भगवान की इच्छा से दिखाने के लिए कि दिव्य पुरुष है, सामान्य बच्चे नए है, तो इसे करके तो उन्होंने तो भी अनुभव किया कि ये भगवान के भेजे हुए भक्त है और बहुत जल्दी भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश अनुसार भजन करते थे बचपन से, और जब 5-6 साल थे उसी समय पूरा भागवत की 700 श्लोक उनका याद था, सब श्लोक की याद था भक्ति सिद्धांत ये भीमा प्रसाद। और इसके बाद उनको भी एक मूर्ति दिया एक कोरमा मूर्ति दिया और उनको भी बताया था पूजा करने के लिए कुर्मदेव, जब मायापुर में थे ये भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पर जन्मस्थान पे, जब वहाँ पर मंदिर की निर्माण करने के लिए सोचा था तो जमीन पे खुद गए और उसी समय ये कुर्मा देव की मूर्ति प्रकट हो गया और उनको दिया पूजा करने के लिए छोटी सी मूर्ति। और बाद में वहाँ पर भी योगपीठ महाप्रभु के वहाँ पर स्थापित किया बाद में, एक नृसिंह वराह रूप, लक्ष्मी नृसिंह वराह रूप, और गरुड़ का दादर भी पूजा करते थे भक्ति विनोद ठाकुर। और इसके बाद तो विद्यालय में गए तो ये बिम प्रसाद और विश्वविद्यालय भी गए और ज्योतिष थे, लेकिन अंत में सब कुछ छोड़ दिया और भक्ति विनोद ठाकुर की सहायता की थी, तो ये अलग अलग किताबें छपने के लिए प्रकट करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर की किताबें या पूर्वाचार्यों की किताबें छपने के लिए प्रकट करने के लिए उन्होंने सहयोग दिया था। और इसके बाद उनके भक्ति विनोद ठाकुर उनके अप्रकट होने के बाद और भक्ति विनोद ठाकुर को भी आदेश दिया था कि आपको ये श्री चैतन्य महाप्रभु के जो जन्म स्थान जो है इसका आपको इसके विकास करना है वहाँ पर और प्रचार करना है और मंदिर की स्थापना करना है, और बाद में उन्होंने भी किया है, वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर पंचतत्व विराजमान है और राधा कृष्ण भी है और भजन भी करते थे तो प्रचार करने से पहले और इसके बाद भी तो श्री बिमल प्रसाद और उन्होंने भी सोचा कि मुझे दीक्षा लेना है, तो पिताजी से भी पूछा जब प्रकट थे आप कृपा करके मेरे को दीक्षा दे दीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं हम नहीं दे देंगे, शिक्षा तो देता है लेकिन दीक्षा नहीं देता है, क्योंकि उसी समय भी ऐसा था कि अलग अलग ये भक्त लोग थे जिसे महाप्रभु के परिकार जैसे नित्यानंदा के अद्वैताचार्य के वहाँ पर वंश है और ये उनकी ये पद्धति था कि ठीक है ये तो भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान के परिकार है और इसलिए तो ये आचार्य थे, जैसे अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, ये गुरु जान थे, लेकिन इसके बाद तो उनके पुत्र भी जैसे अद्वैत आचार्य तीन तो भक्त थे, जैसे अच्युतानंद दो और शुद्ध वैष्णव थे, लेकिन दूसरा भक्त जो थे शुद्ध वैष्णव नहीं थे, वैष्णव भी थे लेकिन उनके भी अलग अलग विचार थे। और इसके बाद उनके पुत्र फिर से तो थोड़ा सा महाप्रभु के दर से अलग थे, लेकिन फिर भी तो ये सब गुरु जन तो बन गए। और आजकल भी अद्वैत आचार्य के वंश के परंपरा है, नित्यानंद वंश के परंपरा है, तो अलग अलग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकार के उनके वंश है जो दीक्षा देता है। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का के अनुसार जो चलता है, ये कम है। और इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा और बोला भी था ये अपने पुत्र को कि अगर हम ऐसे करता है जैसे दूसरे लोग करता है तो अच्छा नहीं रहेगा, तो ये वंश के गुरु परंपरा प्रायः शुद्ध नहीं है, ऐसे कहते थे, इसलिए अच्छा रहेगा तो उदारनाथ के लिए दूसरे से आपको दीक्षा लेना है। तो भक्ति बीमा प्रसाद तो पिताजी से बोले कि तो शुद्ध वैष्णव दुर्लभ है, कहाँ पर है ये शुद्ध वैष्णव जो महाप्रभु के दर के अनुसार भजन करता है, प्रचार करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर मित्र है, परम मित्र है, एक बाबा जी है गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, लेकिन ये शुद्ध वैष्णव है, उनके पास जाना है, ये दीक्षा देंगे आपको। तो उनके पास गया तो गौरकिशोर दास बाबा जी तो भजन करते थे और तो पढ़े लिखे ना थे, मतलब पढ़ सकते थे लेकिन अच्छा तरह से ना, व्यापारी थे लेकिन सब छोड़ दिया था, गृहस्थ भी थे लेकिन सब छोड़ दिया, भजन किए नवद्वीप में, मायापुर में, बाद में ब्रज में भी आए, लेकिन फिर भी अंत में वापिस लौट गए मायापुर। उनके पास जाओ तो उनके पास गया और उनसे निवेदन किया दीक्षा लेने के लिए, देने के लिए। तो उन्होंने मना किया, हम तो योग्य नहीं है और अब तो बड़े विद्वान है, और क्योंकि बिम्ब प्रसाद विद्वान थे तो गुरुकिशोर ने सोचे ये तो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन आदेश तो था पिताजी के, उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी का आदेश है कि आपसे दीक्षा लेना है। तो ठीक है, भक्ति विनोद तो ठाकुर उनके मित्र थे गौरकिशोर, तो उन्होंने सोचा ठीक है देखता है। लेकिन उन्होंने सोचा और बोला भी था, मैं तो महाप्रभु से पूछूंगा, अगर ये कहता है ठीक है दे दीजिए तो मैं दे दूंगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, बिम प्रसाद बोला ठीक है आप पूछिए, तो ठीक है पूछूंगा। तो दो चार दिन के बाद फिर से उनके पास गए और पूछा तो आपसे आपने महाप्रभु से पूछा मेरे बारे में दीक्षा देने के लिए, तो उन्होंने बोला भूल गया पूछना, तो फिर बाद में आओ दो तीन दिन के बाद आओ। तो फिर से दो तीन दिन के बाद तो उनके पास गए और तो गुरुकिशोर दास बाबू जी ने बोला हाँ ठीक है महाप्रभु ने बोला देने के लिए। तो उसी समय बिना यज्ञ करके सरल विधि से उनको ग्रहण किया और नाम भी नहीं वसवान भी दायता देव दायता दास। तो वसवानवी ये श्रीमती रानी के दायता ये कृष्णा है, तो उनके प्रियतम है, उनके दास है, तो ये नाम दिया। और इसका बनों को भी आदेश दिया था कि आपको मायापुर में रहना है और भजन करना है, और ठीक है प्रचार भी कर सकते यहां पर, लेकिन मायापुर कभी नहीं छोड़ना। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद तो भजन करते करते, लेकिन इसके बाद कलकत्ता गए प्रचार करने के लिए। तो कोई तो सोचते थे वहां पर, बोलते भी थे ये क्यों गया, तो महाराज का उनके गुरु महाराज के अनुसार नहीं करते थे। तो उन्होंने ऐसा बोला कि तो उन्होंने तो मना किया बाहर जाने के लिए, लेकिन शुद्ध वैष्णव जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये तो हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण का स्मरण करता है, और श्री चैतन्य महाप्रभु तो हमेशा नवद्वीप में है और कृष्ण ब्रज में है, तो शुद्ध वैष्णव हमेशा ब्रज में है या श्रीद्वीप नवद्वीप में है, मायापुर में है। चिंतन से, भाव से, भावना से ब्रज के बाहर, धाम के बाहर कभी नहीं है। जहां पर भी है भगवान की सेवा करता है, उनकी गुणगान करते हैं, उनके स्मरण करता है। तो इसलिए तो उनके आदेश का उल्लंघन नहीं किए थे। और गुरकिशोर दास बाबू जी महाराज तो शुद्ध वैष्णव थे और उनके प्रिय शिष्य कबाब समझते थे तो कुछ नहीं बोले थे। और गुरकिशोर दास बाबू जी अप्रकट होने के बाद तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद उन्हें सोचा कि मुझे संन्यास आश्रम में प्रवेश करना है, प्रचार करने के लिए ये जरूरत है। तो मंदिर भी स्थापित किए थे और वहाँ पर उनके गुरु महाराज गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज के चित्र के सामने, और वास्तव में शुद्ध वैष्णव तो भगवान का साक्षात दर्शन मिलता है जैसे कृष्ण के या महाप्रभु के, वैसे ही नित्य सिद्ध परिकार का दर्शन भी मिलता है, क्योंकि महाप्रभु अकेले नहीं है, कृष्ण अकेले नहीं है, उनके साथ हमेशा उनके परिकार है। इसलिए वास्तव में तो साक्षात गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज तो थे वहां पर, तो उनसे संन्यास ग्रहण किए थे, लेकिन दूसरे लोग तो नहीं देख सकते थे, सिर्फ शुद्ध वैष्णव भगवान और उनके परिकार देख सकता है और ये समझ सकता है। इसलिए कोई तो अच्छे तरह से तो प्रचार करते थे, लेकिन शुद्ध वैष्णव भी उनके मार्ग में और उनके सामने बहुत सारी समस्या आ जाता है। पुरी में थे भी क्योंकि अच्छे तरह से प्रचार करते थे, और दूसरे गलत जो दर्शन जो दूसरे लोग बताते थे इसका खंडन करते थे, तो इसलिए दूसरे लोग यशिया से उनको कष्ट भी देते थे। और इसलिए एक बार भक्ति विनोद ठाकुर उनको बोल दिया था कि आप वहाँ पर से चले जाइए पुरी से, और मायापुर वहाँ पर जाए और वहाँ पर भजन कीजिए। तो वहाँ पर ऐसे करते हुए भी भजन करते थे काफ़ी साल के लिए, रोज रोज 64 माला जप करते थे कम से कम, या 2 लाख 3 लाख कभी कभी, और एक बार खिचड़ी करते थे पते थे। और वहाँ पर भी तो संन्यास लेने के बाद भी तो प्रचार करते थे मायापुर और पूरा भारतवर्ष में प्रचार करते थे अच्छे तरह से। और मायापुर में दूसरे जो नवद्वीप में, वहाँ पर एक बार ब्रज ये नवद्वीप मंडल परिक्रमा के समय एक बार कोई वहाँ पर के गोस्वामी लोग उनको मार डालने की प्रयास किए थे करते थे, और उनकी और उनके भक्त की ओर तो पत्थर फेंकते थे। इसके बाद एक भक्त के घर में प्रवेश किया उनके एक दो शिष्यों के साथ है, उसी समय उनके एक प्रिय शिष्य थे ये विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को बोला कि आप मेरे ब्रह्मचारी वस्त्र आप ले लीजिए और आपके संन्यास वेश मेरे को दे दीजिए, ऐसे करके आप वहां से चले जाए तो ऐसे भी कहते थे। तो बज गया और बाहर में पुलिस भी आया था और उनको भी समझाया गोस्वामी लोग कि ये तो ठीक नहीं है, धाम के विरोध है। तो ऐसे करके बहुत सारे मत स्थापित किया, कम से कम 64 मत स्थापित किया भारतवर्ष में, और अपने शिष्य को भी पश्चिम देशों में भेज दिए थे, बर्मा वहां पर भेज दिया, कोई भक्त लोग वहां पर प्रचार किए थे सन्यासी लोग, और इसके बाद यूरोप में भी भेज दिया, दो तीन भक्त सन्यासी वहां पर गए जर्मनी, और वहां पर भी तो एक केंद्र खोल दिए थे और प्रचार किए थे, और दो चार भक्त वहां पर भी बन गया, और इनमें से एक जर्मन के भक्त सन्यासी भी बन गए, और इंग्लैंड में भी प्रचार करते थे। और लेकिन ज्यादा भक्तनाट नहीं बन गए उसी समय, और सब लौट गए, और ये दूसरे तो उनके स्वागत करते थे, उनके दूसरे गुरु भाई और भक्ति सिद्धांत ने भी, और सब सोचा ठीक है सफल हो गया प्रचार, दो चार भक्त बन गया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था और भक्ति सिद्धांत के विचार से, और उन्हें भी मालूम था कि उनके एक शिष्य बाद में अच्छा तरह से प्रचार करेंगे, ये थे तो अभय चरण अविंद हमारे ऐसे भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद। और उनको पहले जब बार जब उनके पास गए तो उसी समय भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को बताते थे कि आप तो शिक्षित सज्जन है और आपको अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है श्री चैतन्य महाप्रभु के वाणी, और इसके बाद भी बाद में तो दीक्षा भी ली उनसे, और लेकिन गृहस्थ आश्रम में थे तो थोड़ा बहुत तो भजन तो करते थे और कुछ प्रचार भी करते थे, लेकिन जदन आए क्योंकि गृहस्थ आश्रम में तो पत्नी बच्चे का देखभाल करना है, पैसे कमाना है, लेकिन बाद में भी उन्होंने फिर से बोला तो उनके लेकिन दूसरे तो काफी प्रचार करते थे उनके दूसरे शिष्य भक्ति सिद्धांत के भारतवर्ष में, लेकिन पश्चिम देश में सफल नहीं थे, और एक महीने उनके उनके शरीर छोड़ने से पहले एक महीने से पहले प्रभुपाद एक चिट्ठी लिखा और महाराज भक्ति सिद्धांत से फिर से पूछा कि मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। और समय भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने एक चिट्ठी वापस भेज दिया और इसमें फिर से उल्लेख किया था कि आप अंग्रेजी भाषा में आपको प्रचार करना है चैतन्य महाप्रभु के वाणी, तो और इसके बाद तो उसी समय कलकत्ता में थे और उनके शिष्यों के साथ थे, और थोड़ा सा भक्ति सिद्धांत असंतुष्ट थे, तो शुद्ध वैष्णव हमेशा आनंद पूर्वक सेवा करता है और संतुष्ट है क्योंकि भगवान तो संतुष्ट है उनकी सेवा से, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक भी भाव है तो कभी कभी आध्यात्मिक का दुख होता है, उदासीन भाव भी है आध्यात्मिक, तो थोड़े से दुखी थे क्योंकि प्रचार तो करते थे लेकिन पश्चिम देश में तो कोई गायन आया भी था अच्छा तरह से प्रचार करने के लिए, और भारतवर्ष में भी मठ में जैसे उनके मठ उन्होंने स्थापित किया है बहुत सारे मठ भरद्वाज में 64 मठ और 12 मठ तो कलकत्ता में उन्होंने स्थापित किए थे, और ठाकुर जी स्थापित किए थे वहां पर बाग बाजार, और वहां पर उनके वहां पर भी रहते थे और उनके शिष्य वहां पर थे, लेकिन आसपास में थोड़ा सा लड़ाई करते थे, मेरे को ये कमरे चाहिए वो कमरे चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, तो इससे थोड़ा सा असंतुष्ट है। और उन्होंने सोचा मैं अभी क्या करूं, उन्होंने भी सोचा तो शरीयत छोड़ना तो अच्छा रहेगा, तो क्योंकि उनके शिष्य तो जब लड़ाई कर रहा है तो उनका अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी तो शुद्ध वैष्णव जो भगवान चाहता है ये करता है, तो वास्तव में भगवान की इच्छा से और स्वेच्छा से भी उन्होंने तो उसी दिन आज के मास और तो उसी तिथि आज के तिथि षष्ठी तिथि इस मास के पौष मास शुक्ल ये कृष्ण पक्ष के शरीय छोड़ दिया। ये पश्चत देश के अनुसार ये था पहले जनवरी 1937, तो उनके शिष्य कलकत्ता में थे उनके साथ, और उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं था और चिंतित थे, और लेकिन उनकी सेवा करते थे, और पहले जनवरी तो नए साल के पहले दिन तो पश्चिम देश के नए साल शरीयत छोड़ दिया, तो उनके वहां पर प्रमुख शिष्य ने सोचा तो चले गया, अभी उनका अंतिम संस्कार करना है, शरीर को जलाना है वहां पर और अस्थि विसर्जन करना है ये पवित्र गंगा नदी में। तो उनके एक दो शिष्य थे, उन्होंने बोला सोचा बोले कि ये तो उचित नहीं है, तो ये तो हमारे गुरु महाराज दिव्य पुरुष है, उनके दिव्य शरीर है, तो जलाना उचित नहीं है, उनका समाधि करना है दिव्य शरीर में वहां पर मायपुर, उनका वहां पर स्थापित करना है। तो दो तीन भक्त दो तीन उनके प्रमुख शिष्य तो बात करते थे, लेकिन एक उनके विनोद बिहारी ब्रह्मचारी और भक्ति सिद्धांतों को भी संन्यास देने वाले थे, लेकिन उन्होंने मना किया क्योंकि उनका बहुत सेवाएं थे, जमीन का देखभाल करना था अलग अलग मत के, उन्होंने सोचा ना अभी ना बाद में, लेकिन योग्यता है तो उन्होंने बोला और कि ये हमारे गुरु महाराज के अंतिम ऐसा अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, हम उनके दिव्य शरीर ले लेंगे और मायपुर में मूल मठ में स्थापित करेंगे चैतन्य मठ, वहां पर गुरु गौरांगा गंधारवी का गिरिधारी ठाकुर जी है वहां पर स्थापित किए थे भक्ति सिद्धांत ने, और चारों कोनों में उन्होंने वहां पर चार आचार्य संप्रदाय के हमारे वैष्णव संप्रदाय के आचार्य स्थापित किए थे हमको दिखाने के लिए कि हम तो सब भगवान के नित्य दास है और विनम्र भाव में रहना है और सबको सबके साथ ये आदर पूर्वक रहना है। तो रोज रोज उनकी सेवा होता है आजकल भी, तो जब ठाकुर जी की सेवा करता है भोग लगाता है तो चार आचार्य को और जो आदि गुरु जैसे हमारे संप्रदाय ब्राह्मण जी है और मध्वाचार्य प्रमुख है, उनके द्वैत द्वैत दर्शन है, जो वास्तव में ये सब तो अलग अलग नाम दिया गया है दर्शन के, लेकिन वास्तव में सब जिस महाप्रभु के अचिंत वेद तत्व है वैसे ही उनके दर्शन है, लेकिन अलग अलग कालिदेश पत्र के अनुसार दिया था। इसके बाद दूसरे कोनों में ये स्थापित किए रामानुजाचार्य और वहां पर आदिगुरु लक्ष्मी देवी है और तो नारायण की पत्नी, तो वहां पर स्थापित किए थे और उनके विशिष्ट द्वैत उनके दर्शन था. और इसके बाद तीसरे कोनों में ये निम्बार्काचार्य स्थापित किए थे और जो वहां पर आदि गुरु है ये चार कुमार जिन्होंने हंस अवतार से दिव्य ज्ञान प्राप्त किए थे. और उनके दर्शन है ये द्वैत अद्वैत दर्शन. और चौथे कोने में स्थापित किया है ये विष्णु स्वामी जो रुद्र संप्रदाय शिव जी के प्रमुख प्रधान शिष्य थे. और वास्तव में इस संप्रदाय तीन विष्णु स्वामी थे 5000 वर्ष से पहले. इसके बाद लगभग 2000 से पहले एक विष्णु स्वामी आए और तीसरा विष्णु स्वामी महाप्रभु के थोड़ा सा पहले आए थे तो स्थापित किया. तो जब ठाकुर जी को भोग लगाता है तो उन चारों को भी भोग लगाता है. इसके बाद आरती करता है गुरु गौरांग धार्विक गिरिधारी और चारों परिक्रमा करते हुए उनको भी आरती करता है. तो और ये निशिंगा गुरु के नाम से प्रसिद्ध थे. मतलब दूसरे लोग मायावादी लोग भी दूसरे स्मार्त ब्राह्मण और उनसे डरते थे क्योंकि उनके पास तो बहुत ज्ञान था और शास्त्रविद थे, वेदांतविद थे, सिद्धांतविद थे, रस तत्वविद थे. तो लेकिन निर्जाभाव से तो उनको भी कष्ट देने वाले बहुत थे मायापुर में. लेकिन भगवान की कृपा से तो भगवान तो शुद्ध वैष्णव की रक्षा करते थे. तो वहां पर तो ये विनोद बिहारी उनके दिव्य शरीर लेकर तो एक वहां पर सैलदा रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन पूरा एक ट्रेन तो रिजर्वेशन किए थे सब शिष्य के लिए. उनके दिव्य शरीर वहां से कृष्णनगर तक ट्रेन से ले लिया और वहां पर से गाड़ी से लेकर मायापुर में पहुंच गए और वहां पर स्थापित किया है उनके समाधि उनके मूल मठ में. और रोज रोज उनकी सेवा होता है. वहां पर भी गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के समाधि है और उन्होंने भी वहां पर तो गोवर्धन पर्वत प्रकट किया है क्योंकि नवद्वीप और ब्रज अभिन्न है, भिन्न और अभिन्न है. तो गोवर्धन पर्वत प्रकट किया वहां पर और राधा कुंड और श्याम कुंड भी वहां पर भी प्रकट किया है. तो ये महान पुरुष है, विद्वान थे, ज्योतिष आचार्य भी थे, लेकिन ये सब छोड़ दिया ये ज्योतिष शास्त्र. लिविंग एनसाइक्लोपीडिया अभी कहते थे. मतलब जैसे शब्दकोश है कुछ कुछ मतलब खोजने के लिए तो किताबें में देखना है, लेकिन भक्त लोग और दूसरे लोग भी उनके पास जाते थे प्रश्न पूछने के लिए. हमेशा तो जवाब उनके पास था. लगभग ये श्रुतिदार थे. एक बार तो शास्त्र पढ़ता इसका स्मरण कर सकते थे. उनके भी शिष्य ये भी तो हमारे ऐसे भक्तिवीरंत स्वामी प्रभुपाद तो ये भविष्यवाणी महाप्रभु के और भक्ति विनोद ठाकुर के और भक्ति सिद्धांत के पूरा विश्व में ये महामंत्र फैल जाएगा तो ये पूर्ण की थी ये भविष्यवाणी. तो ये सबसे प्रिय उनके शिष्य थे और शक्तिशाली थे. लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको कि सिर्फ प्रभुपाद उनके शिष्य थे, दूसरे सब तो असत हो गया है. प्रभुपाद कुछ बताया था क्योंकि दो चार शिष्य थे तो उनके अनुसार नए चलते थे और भी लड़ाई भी हो गया था भक्ति सिद्धांत के अप्रकट होने के बाद. लेकिन फिर भी भक्ति सिद्धांत ने भी बोले कि हमारे को शुद्ध वैष्णव है, जैसे नाम भी दिए थे जैसे श्रीधर महाराज या और दूसरे भक्ति प्रमुख पुरी महाराज शुद्ध वैष्णव थे. दो चार और नाम दिया था अभी यार नाय है. और उनके श्रीधर महाराज विद्वान थे और उन्होंने भी बहुत सुंदर प्रभुपाद के गुणगान में स्तोत्र उन्होंने प्रकट किया और प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि हमारे मत में हर मत में ये इसका इसका स्तोत्र का उच्चारण करना है हर दिन सुबह मंगल आरती के बाद। तो आजकल भी हर गोदिय मत में ये स्तोत्रम प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत के गुणगान में उच्चारण करते हैं। और क्योंकि तो आज के तिरुभाव तिथि हम मनाता है तो दोपहर के समय पुष्पांजलि अर्पण करेंगे तो भोग लगा देंगे और पुष्पांजलि अर्पण करेंगे और आरती भी करेंगे। इसके बाद सबके लिए प्रसाद है। और अभी दो तीन शब्द हमारे एक पुजारी के बारे में बताना चाहता है जो जिनका देहांत हो गया था तो 13 दिन से पहले। तो आज भी उनके उनके लिए कार्यक्रम है तो दिन दो तीन शब्दों के बारे में बताना चाहता हूँ। उनका नाम था करुणानिधान। ये गौर गोविंद महाराज के शिष्य थे। उनका जन्म 5 जनवरी 1943 वहाँ पर ये दक्षिण भारत में ये चित्तौर ये तिरुपति के पास है। और इसके बाद तो भौतिक दृष्टि से भी योग्य थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। और इसके बाद तो ये इंडियन एयरफोर्स में सेवा करते थे और मुंबई में भी रहते थे लेकिन अलग अलग जगह पे तो उन्होंने सेवा करते थे। पिछले साल मैं असम गया और उनको बताया था कि मैं असम जा रहा हूँ वापिस आके। मेरे से भी पूछा कैसा लगा तो मैंने तो बोला अच्छा है। तो वो वहाँ के वक्त तो बहुत अच्छे है और लेकिन थोड़ा सा खतरनाक जगह है, वहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी है और यहाँ पर तो वहाँ पर आजकल भी रोज रोज तो आर्मी देख सकता है और दो तीन एयरबेस है। और वहाँ पर भी सेवा करते थे जोरघाट में, वहाँ पर जोरहाट में वहाँ पर एयरबेस है और दूसरी जगह में। और इसके बाद तो उन्होंने दीक्षा रघुवीर मठ से लिया था जूह में 1998। और इसके बाद सेकेंड इनिशिएशन हुआ 1998। नहीं, एक मिनट, दो बार लिखा है सेकेंड इनिशिएशन 1998 तो मतलब उसी समय लगभग हनुमान ये हरिनाम लिया। इसके बाद ब्राह्मण दीक्षा लिया और वहाँ पर जो मंदिर में पुजारी थे शालिग्राम शिला की सेवा करते थे। और इसके बाद उनकी इच्छा थी यहाँ पर आने के लिए, मतलब पूरा जगत में तो भक्त लोग की इच्छा है यहाँ पर आने के लिए, विशेष करके वृद्धावस्था में जब पहुँचने वाला है यहाँ पर आना चाहता है, यहाँ पर रहना चाहता है, यहाँ पर शरीर छोड़ना चाहता है। तो वैसे ही उनकी ऐसे इच्छा थी। और वहाँ पर तो कभी कभी यहाँ पर आते थे लेकिन वापस गए। और लेकिन 2005 वहाँ पर आए थे और थोड़ा बहुत सेवा करते थे। और इसके बाद तो मेरे से भी पूछा ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, लेकिन हमारे पास भगवान की कृपा से बहुत पुजारी है। तो मैंने बोला तो कि अभी तो पुजारी तो बहुत है तो लेकिन विनम्र भाव में रहते हुए और मेरे से बार बार पूछते थोड़ा सा सेवा दे दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है थोड़ा सा दे देंगे धीरे धीरे। और इसके बाद तो क्योंकि तो वृद्धावस्था में तो पहुंच गया थे तो मैंने सोचा ठीक है राधे श्याम की सेवा दे देंगे धीरे धीरे। मतलब पहले गोपियां की सेवा कभी कभी देते थे एक बार हफ्ते में पहले, इस बार दो बार हफ्ते में। और इसके बाद तो पूर्ण रूप से यहाँ पर उनका वास तो हो गया था और मेरे घर के, के के पास तो वहाँ पर अपना घर, मतलब घर तो था लेकिन वहाँ पर दूसरे भक्त जो वहाँ पर रहते थे तो उनको भेज दिया, तो पड़ोस थे हमारे। तो इसके बाद तो रोज रोज गोपियाँ की सेवा करते थे। इसका मेरे से भी पूछा कभी कभी मौके दे दीजिए राधे श्याम सुंदर सेवा करने के लिए, ये स्वाभाविक है। और क्योंकि हमारे इष्ट देव तो कृष्णा ही है और राधा रानी की सेवा तो राधा रानी स्वामिनी है और उनकी माध्यम से हम कृष्ण की सेवा कर सकता है। तो बार बार और क्योंकि विनम्र भाव में हमेशा रहते थे, हमसे बड़े थे और सबके साथ अच्छा तरह से रहते थे, तो कभी कभी पुजारी के बीच में थोड़ा सा लड़ाई होता है लेकिन ये हमेशा लड़ाई से दूर रहते थे, कोई मतलब नहीं था। सिर्फ सेवा करते थे और विनम्र भाव में रहते थे, आते थे सेवा करते थे वापिस चले जाते अपने घर पे। तो इसके बाद धीरे धीरे सेवा भी दिया था राधा श्याम सुंदर के, पहले एक बार हफ्ते में सुबह और शाम को और इसके बाद दूसरे पुजारी था तो तबीयत ठीक नहीं था और वो विदेशी थे रशिया के, वहाँ पर चले गए वापस। तो उसको एक और दिन दे दिया था तो उनके दो दिन ड्रेसिंग था, मंगलवार और शुक्रवार सुबह और शाम को। क्योंकि मैं तो भी तो सेवा करता हूँ सुबह लेकिन शाम को आना मेरे लिए तो मुश्किल है, तो उसको शाम को भी ज़्यादा सेवा दिया। तो तीन चार बार राधे श्याम सुंदर की श्रृंगार सेवा करते थे शाम को। और इसके बाद भी जो ज्वेलरी जो तो जो होता है आभूषण ठाकुर जी के या छत्र से रखते थे और तो पोशाक भी ले आते थे सुबह शाम को, खुद ले आते थे पहले, लेकिन अभी दो तीन साल से क्योंकि वृद्धावस्था में पहुंच गया थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसलिए दूसरे भक्त पुजारी को भी बोलते थे ले आने के लिए, लेकिन अच्छा तरह से देखभाल करते थे ये ठाकुर जी की पोशाक के और आभूषण के। और इसके बाद तो अभी छः महीने से पहले उनका तो जॉन्डिस पीली रोग हो गया था और इसके बाद यहाँ पर इलाज लेने के लिए तो प्रयास किया और लिया लेकिन फिर भी उनका तबीयत ठीक नहीं था। तो मेरे को बताया था गर्मी ऋतु में मुंबई जाऊँगा और वहाँ पर दवाई ले लूँगा, ट्रीटमेंट ले लूँगा। तो ठीक है, और मैं भी बाहर गया देर महीने के लिए, वापिस आए फिर से नहीं आया था, लेकिन जन्माष्टमी से या बलराम पूर्णिमा से पहले आए थे और फिर भी उनका तबीयत ठीक नहीं था एकदम। तो कभी कभी आते थे सुबह और सेवा करते थे थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा सेवा नहीं कर सकता था। और राधाष्टमी में भी आया तो लेकिन दोनों मूर्ति नहीं कर सकते थे राधा कृष्ण के, सिर्फ एक मूर्ति करते थे राधा रानी। और उसके बाद कार्तिक से पहले मेरे को भी बताया था कि अभी कुछ सेवा नहीं कर पाता हूँ और अपना कमरे में थे। और इसके बाद अभी तो उनका देहांत तो हो गया, हमको सब जाना है, लेकिन सौभाग्य की बात है जब ब्रज में शरीर छोड़ सकता है। और इसके बाद वास्तव में तो भक्त के संग में और लेकिन रामकृष्ण मिशन में उनका उन्होंने उनका अपना शरीर छोड़ दिया था और इसके बाद क्रिया तो अंतिम संस्कार किया है और आज उनके घर पे तो यज्ञ अनुष्ठान होगा और हमारे भक्त लोग पुजारी लोग वहाँ पर जाएंगे, छोटा सा घर है तो पुजारी वहाँ पर जाएंगे, कीर्तन करेंगे, थोड़ा सा कथा होगा। और इसके बाद यहाँ पर भक्ति सिद्धांत के साथ तो उनके उनके फोटो वहाँ पर लगे देंगे और उन साथ ही साथ पुष्पांजलि अर्पण करेंगे उनके आध्यात्मिक हित के लिए। हिज ग्रेस करुणानिधान प्रभु की।